ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो हमें बहुत ही हर्ष है कि हमारे आदरणीय प्रेम भाई जी हमारे समक्ष हैं। तो बहुत ही सुंदर टॉपिक है, लेकिन हम सब उनको ताली बजाएंगे। लेकिन स्वागत में आपका बहुत 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 तहे दिल से स्वागत है। लेकिन थोड़ा हमारा मन, बुद्धि और शरीर भी चुस्त रहे ना, तो इसके लिए हम सब खड़े होकर के भाई साहब को एक हाथ से ताली बजा के स्वागत करेंगे। सभी खड़े हो जाएंगे। हाँ, थोड़ा ऐसे इधर उधर लेफ्ट राइट हिले। हाँ, अलर्ट है सभी? जो नहीं उठे हैं वो भी उठ जाए। हाँ, लेफ्ट राइट दोनों हाथ से ताली बजाए। हाँ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो आदरणीय राजयोगी प्रेम भाई जी कर्नाटक गुलबर्गा क्षेत्र के निर्देशक हैं। आप गत 50 वर्षीय ईश्वरीय यज्ञ में समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हैं। आपने कर्नाटक विश्वविद्यालय से एमए डिग्री प्राप्त की है, गुजरात से गीता अलंकार की डिग्री प्राप्त की है। तो आप राज्यों का रिसर्च फाउंडेशन की सोशल विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर है। तो हम फिर से उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। और फिर जैसे बाबा ने कहा कि जीवन परिवर्तन के लिए स्मृति ही मुख्य है, तो हमारी जीवन परिवर्तन ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता बनने के लिए मुख्य हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए स्मृति स्वरूप बनने का। तो हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं जो इतने अनुभवी मूर्त हम सबके समक्ष हैं, जो खजानों को लेकर के आए हैं। तो हम सुनेंगे अभी आदरणीय प्रेम भाई जी से कि स्मृति स्वरूप कैसे बने। ओम शांति,
ओम शांति। मैं जब आया तो वो बहन योग करा रहे थे, तो आप लोग बहुत ट्रांस में गए होंगे। समझते हैं ट्रांस में जाना, इसीलिए आपको उठवाया कि आप जागृत हो जाएं। मेरी हिंदी समझते हैं? जो समझते हैं हाथ उठाइए। वाह, मुबारक। बाकी ट्रांसलेशन शायद मिल रहा है आपको। मैं माना आत्मा, ठीक है, आप ऐसा ऐसा कीजिए या ऐसा ऐसा। मैं माना आत्मा, आत्मा में हमको पहला पाठ दिया गया कि आत्मा में तीन शक्ति, मन, बुद्धि और संस्कार। अब मन माना संकल्प, माना विचार, थॉट्स, सोच। अब ये विचार जिसको हम थोड़ा और सूक्ष्म भाषा में कहते हैं, स्मृति। परंतु यह स्मृति जो होती है ना, स्मृति का भी आधार संस्कार होते हैं। समझते हैं आप? जो हम सोचते हैं वो कैसा सोचते हैं? संस्कारों के अनुसार। हर एक का स्वभाव अपना अपना होता है, संस्कार अपने अपने होते हैं। तो वो संस्कार के अनुसार हम सोचते हैं। तो अब जब कहा हमको कि हम स्मृति स्वरूप, हरेक को स्मृति रहती है अपनी अपनी, जैसे हमारे लौकिक जीवन में कोई को ये कहा जाए कि तुम ब्राह्मण हो लौकिक में, तो वो वही सोच चलती है उसकी। और वो जब ब्राह्मण है ना, तो उसी अनुसार उसके संस्कार जागृत रहते हैं। ये एक जन्म की बात नहीं है, जन्म जन्मांतर की बात होती है। मेरे अंदर जो संस्कार हैं वो एक जन्म के नहीं हैं, ठीक है, एक जन्म के नहीं हैं। ऐसे हमने लिए 84 जन्म, 84 बर्थ्स, परंतु 84 में भी जो ज्यादा प्रभावित करते हैं वो लास्ट लास्ट के, जैसे बाबा मुरली में आज या कल कहा कि बच्चे द्वापर को भी नरक नहीं कहेंगे। सुना आपने, द्वापर को भी नरक नहीं कहेंगे। कलयुग आदि भी थोड़ा थोड़ा नरक, मगर अभी पूरा नरक। माना हरेक के अंदर आसुरी संस्कार स्वभाव अब अधिक है, तो हमारी सोच भी कैसे चलेगी, आसुरी जैसा हमारे संस्कार बने हुए हैं। तो ये संस्कार भी कहां से बनते हैं, सोच से ही बनते हैं। जैसे कहते हैं ना हमारी कन्नड़ भाषा में हुट गुण, तो वो कहां से आते हैं, अनेक जन्मों के जो हमने सोचे थे विचार वो रिकॉर्ड हो जाते हैं, वो आत्मा में रहते हैं, माना मेरे अंदर रहते हैं। जब मैं आत्मा इस शरीर में आती हूं तो वो संस्कार बाहर आते हैं। जैसे आपने देखा आजकल कोई 2 साल का बच्चा तबला बजाता है बहुत अच्छा, है ना, कंप्यूटर ऑपरेट करता है, ऐसे ऐसे संस्कार ये कहां से आ रहे हैं, पिछले जन्मों से। अब वही संस्कार लोग कहते हैं कि वही संस्कार स्वभाव बदलने चाहिए। समझिए, किसी को सिगरेट पीने का संस्कार स्वभाव है, शराब पीने का है, मांस खाने का है, चोरी करने का है, झूठ बोलने का है, तो ये जो आदतें होती है ना, अब वो लोग गवर्नमेंट कहती है कि तंबाकू छोड़िए, सिगरेट छोड़िए, शराब, परंतु नहीं छूटती है क्योंकि वो संस्कार बन गए हैं। तो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, सोच बदलनी चाहिए, विचार बदलने चाहिए। तो अब शिव बाबा ने ब्रह्मा बाप के द्वारा हम बच्चों को नए विचार दिए, ये कोई नहीं देता है। आप देखेंगे जो भी पाठ्य पुस्तक हमारी होती है, चाहे वो हिस्ट्री की है या लैंग्वेज की है या साइंस की है, वो सारे भूतकाल से संबंधित होती हैं, भविष्य उनके सामने है नहीं। समझो किसी के सामने भविष्य है भी, तो वो भविष्य यही होता है कि ये डॉक्टर बनेगा, वकील बनेगा, वो बनेगा, परंतु ये तो किसी के पास नहीं है कि ये एक श्रेष्ठ योगी बनेगा या फरिश्ता बनेगा या देवता बनेगा, ये विचार तो कोई देता नहीं है क्योंकि किसी को ज्ञान नहीं है उसका। जैसे बाबा आज कह रहा था सत्ययुग जैसे लोपप्राय है, या यूं कहेंगे देवी देवता धर्म या दैवी संस्कार लोपप्राय हैं, लुप्त हुए हुए हैं, अब परंतु वो आत्मा में है। ठीक है, दैवी संस्कार लुप्त हुए मगर वो आत्मा में है। तो बाप आकर के क्या करते हैं, शिव बाबा आकर के क्या करते हैं, वो सुप्त संस्कारों को जगाते हैं। जैसे कहा जाता है कि बकरियों के भीड़ में ये शेर का बच्चा भी चला गया, तो वो भी बकरी की तरह ही चरता था, चिल्लाता था। एक दिन वहां शेर आया, उसने देखा कि ये बकरियों के बीच में शेर का बच्चा कैसे आ गया, तो उसको पास जाना चाहता है तो वो डर के भागता है। सुना कहानी आपने, तो उसको पकड़ता है, वो उसको ले जा करके तालाब के किनारे उसको जोर से हुंकार देता है, तो शेर, तो वो जागृत हो जाता है, उसके अंदर की संस्कार जागृत हो जाते। ऐसे ही यहां भी बाबा हम बच्चों को ये जो केंद्र है ना, केंद्रों में बुला बुला करके, मधुबन में बुला बुला करके बार बार ये कह रहा है कि बच्चे तुमको ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना है या तुमको ऐसी राजधानी में जाना है। तो ये जितना जितनी बार आप सुनते हैं, जितनी बार आप सुनेंगे उतनी बार जैसे आत्मा के अंदर के संस्कार जागृत होंगे और उस अनुसार संकल्प चलेंगे, क्योंकि अभी वो संकल्प हमारे पास स्टॉक में नहीं है, बाहर नहीं है, दिखाई नहीं देते हैं, परंतु हमारे शास्त्रों में कहा गया, मनः एव बंध मोक्षयोः कारणम्। मनः एव बंध मोक्षयोः कारणम्, मन ही बंधन का या मुक्ति का कारण है। माना मन के आधार पर ही हमारी मुक्ति मिल सकती है या बंधन में आ सकते हैं। अब ये क्या है बंध मोक्ष, तो अब मालूम पड़ता है बाबा के बनने के बाद हम जो विचार करते हैं वो विचार या तो निकृष्ट होंगे, लो, या तो हाई क्वालिटी के, पर हाई क्वालिटी नहीं मिलती है। और फिर भक्ति में गीत गाएंगे, मैं नीच खलकामी पाप हरो देवा, मैं कौन हूं, देखो मैं नीच खल कामी, मैं नीच हूं, खल हूं, कामी हूं, पाप हरो देवा, मैं ऐसा हूं और मेरे पाप आप परिहार करो। अब भारत में ऐसा साहित्य नहीं है कि पाप कोई दूसरा हर सकता है, यहां तो ये कहा जाता है कि जो करेगा सो पाएगा। ठीक है ना, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी यही बोलता है कि एवरी एक्शन हैज गॉट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और फिर हमारे पास कहा जाता है माडिद उन्नो महाराज, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। परंतु ये लोग आजकल भूल गए इसको, वो समझते हैं चलो चलता है ऐसे ही। परंतु अब हम भगवान बाप शिव बाबा हमारे संकल्पों को बदलता है, सोच को बदलता है। ऐसा नहीं है बच्चे, जो तू करेगा वो तुझे ही मिलेगा और किसी को नहीं। इसीलिए अब हम सोचते हैं कि वो स्मृति जागृत करें। स्मृति स्वरूप बनने का तात्पर्य है कि आत्मा की जो ओरिजिनल क्वालिटीज हैं, आत्मा की जो ओरिजिनल क्वालिटीज हैं कि जो मैं आत्मा हूं, मैं ही आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं ही आत्मा हूं, मेरी आत्मा नहीं, मैं ही आत्मा हूं, और मुझ आत्मा में सतो प्रधान संस्कार हैं, मैं ही आत्मा सतयुग में देवी देवता का पार्ट किया, त्रेता में क्षत्रिय का किया, द्वापर में वैश्य का किया, अब जाकर के शूद्र बने हैं, निकृष्ट बने हैं, नीच बने हैं, खल कामी बने हैं। अब वो टेम्पररी है, क्योंकि ये लेयर्स आते गए आत्मा के ऊपर। अब बाबा आकर के उनको धीरे 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 धीरे, तभी बाबा कहता है मन मना भव, बचे तू मेरी याद कर। या मन मना भव का एक नया अर्थ आपको सुनाते हैं। मन मना भव अर्थात कि जो संकल्प बाबा करते हैं वही संकल्प हमको करना है। जो संकल्प बाबा करते हैं वही संकल्प हमको करना है। तो बाबा कहता है कि मैं परम धाम से यहां आया, क्यों आया? सतयुग की राजधानी स्थापन करने के लिए। तो मैं यही सोचता हूं, बाबा कहता है मैं यही सोचता हूं कि यहां पर जो नर हैं वह कैसे नारायण बनेंगे, यहां पर जो नारी है वह कैसे लक्ष्मी बनेगी, ये भगवान की सोच। तो अब कहता है कि बचे सारे विश्व में जो करीब करीब 700 करोड़ आत्माएं हैं, 700 करोड़ आत्माओं में आप विशेष आत्माएं हो, आप कोई साधारण आत्माएं नहीं हो, स्पेशल सोल्स, आपका पार्ट भी स्पेशल है और आप ही 5000 साल तक पार्ट करते हैं, बाकी सब लोग थोड़ा थोड़ा करते हैं, हम पूरा पार्ट लेते हैं, हम हीरो एक्टर्स हैं। ये सोच बदल रही है, विचार बदल रहे हैं। आप बाहर की दुनिया में, लौकिक दुनिया में जाएंगे तो वो घर की बातें करेंगे, लौकिक बातें ही करेंगे। और यहां भी मैं आज सवेरे कह रहा था कि हमारी माताएं हैं बहुत बात करती हैं। आप देखेंगे ना, वहां चाय पियेंगे, सवेरे क्लास में आएंगे, वहां से क्लास में आने तक वाणी चालू ही रहती है। वह कोई आत्मा की, परमात्मा के योग की नहीं रहती। आप उनके, आप देखिए, सर्वे करेंगे ना तो मेजॉरिटी बहने, माताएं, भाई वो घर की बातें करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि आदत पड़ी हुई है। कहा जाता है आदत बुरी बला है, डालो तो आदत अच्छी, डालो तो आदत बुरी, समझा? इसीलिए भगवान कहता है, वह एक वैदिक सूत्र है, उसमें कहता है शिव संकल्प मस्तु मे मनः, शिव संकल्प मस्तु मे मनः। देखो, मेरा मन शिव संकल्प वाला बने, माना मेरा मन, माना मेरे विचार कैसे हो? एक तो शिव संकल्प का तात्पर्य होता है कल्याणकारी संकल्प, है ना? शिव माना कल्याणकारी, तो एक तो शिव कल्याणकारी, दूसरा शुभ संकल्प, तीसरा वही संकल्प जो शिव बाबा करते हैं, है ना? संकल्पों से संकल्प मिलने चाहिए, विचार से विचार मिलेंगे तभी दोस्ती होगी। जो दोस्त होते हैं ना, तो दोस्त कब बनते हैं? जब उसके विचार इसके विचार मिलते होंगे। हिंदी में कहा जाता है चोर चोर मौसेरे भाई, एक चोर होगा ना तो दूसरे चोर से जल्दी दोस्ती करेगा। ऐसे ही यहां भी एक योगी दूसरे योगी से दोस्ती करेगा। तो हम सब योगी बनने के लिए चल रहे हैं। अब बाबा कहता है कोई घंटा दो घंटे के योगी तो हो नहीं आप, आपका जीवन ही योगमय होना चाहिए। अब ये योगमय जीवन कब होगा? जबकि उसके उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते आत्मिक विचार चले। इसको ये गीता में कहा कि पश्चन श्रृणवन, देखते सुनते स्पृशन स्पर्श करते ग्रहण करते नुन मिशन निमिशन नपि, एक एक मिनट हम वो याद में रहे। क्या याद में रहे? कहेंगे शिव बाबा की याद में रहेंगे। वो क्या शिव बाबा है? शिव बाबा की याद में रहेंगे। पर ये शिव बाबा कौन है? शिव बाबा हमारा बाबा है। उसके अंदर क्या है? बाबा के अंदर बाबा है। बाबा के अंदर क्या है? शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, पवित्रता, ये सब के सब बाबा के अंदर है। तो वो धीरे धीरे जब कोई संपर्क में आते हैं ना, तो जैसा कहा जाता है जैसा संग वैसा रंग। तो संग यदि परमात्मा का करेंगे तो परमात्मा का रंग लगेगा। अब संग करना माना क्या? संग कैसे करेंगे? कोई स्थूल शरीरधारी होता है तो स्थूल शरीरधारी का संग करेंगे। अब बाबा कोई स्थूल शरीरधारी तो है नहीं, वो तो सूक्ष्म है। तो वो सूक्ष्म का तार तो संकल्पों से ही जुड़ सकता है। माना हम जो सोचते हैं, हमारी जो सोच है वो शिव बाबा के जैसी होनी चाहिए। शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा, ये तो वही हो गया, ओ ओम नमो शिवाय या ओम नमो और भी कुछ बोलते हैं हरेक, है ना? वैसा नहीं, अर्थ ही नहीं जानते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो कुछ भी हो, अर्थ तो नहीं जानते हैं। दुनिया में समझो कोई ओम नमः शिवाय बोलता भी है तो शिव उसको मालूम ही नहीं है, वो तो शंकर को ही शिव बोलता है, है ना? अब शंकर तो शिव है नहीं। अब शिव बाबा ने दो तीन दिन पहले कहा कि ये भारत मेरा बर्थ प्लेस है, शिव बाबा का बर्थ प्लेस है, लक्ष्मी नारायण का बर्थ प्लेस है। बोला ऐसे, लक्ष्मी नारायण का बर्थ प्लेस है, कृष्ण का बर्थ प्लेस है, विष्णु का बर्थ प्लेस है, शंकर का बर्थ प्लेस नहीं है। क्यों नहीं है? उसका इधर काम ही नहीं है, नो वर्क। शंकर का इधर कोई काम ही नहीं है तो जन्म क्या लेगा, ऐसे बाबा ने कहा। तो जब वो यहां आता ही नहीं है तो ये वो दो एक कैसे हो सकते? वो आकारी शरीरधारी, ये बिना शरीर वाला ज्योति स्वरूप। तो इसीलिए हमारे संकल्प, शिव बाबा ने कहा ये मुझे संकल्प आया कि मैं नई सृष्टि की रचना करूं, नई सृष्टि की रचना करूं। तब बाबा कहता है मैंने ब्रह्मा, मैंने क्या किया? सूक्ष्म लोक की रचना किया। सूक्ष्म लोक मालूम है? सूक्ष्म लोक, सूक्ष्म लोक की रचना किया तो सूक्ष्म लोक में ब्रह्मा को बिठाया। फिर वहां से नीचे देखा दादा लेखराज को, फिर उसको भू भू करके प्रजापिता ब्रह्मा बनाया। तो प्रजापिता ब्रह्मा को दादा लेखराज को बाबा ने बार बार यही कहा कि तू प्रजापिता ब्रह्मा है, तू प्रजापिता ब्रह्मा। तो वो उसकी स्मृति जागृत हो गई। क्यों जागृत हुई? तो आज सवेरे दादी जानकी कह रही थी कि उसने या दादियों ने अपना तन मन धन सब उसकी सेवा में लगाया। उसकी सेवा में लगाया वही हमारी सेवा हो गई। तो लगना ना, तन लगना, मन लगना, धन लगना। अब वो कितना लगता है हर एक का वही जाने। हम तो ऐसा बोलते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ऐसा ओम जय जगदीश हरे, या केरे नीरु केरे के चलिए आगे, ऐसा बोलते हैं पर देते कुछ नहीं है। देंगे क्या, 5 रुपया 10 रुपया, टाइम कितना देते हैं। अब हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही है समझे, बहुत मुश्किल से 1 घंटा 1 दिन में देते हैं। क्लास में जाते हैं ना, रोज क्लास में जाते हैं ना, तो उतना ही टाइम हम देते हैं। फिर क्लास के बाहर आए तो बाबा कहते हैं माया ऐसा थप्पड़ मारती है जो फिर ज्ञान भूल जाता है, लौकिक में चले जाते हैं, वही बातें। तो अब स्मृति गुम हो जाती है कि मैं आत्मा हूं। जैसे क्लास में कितनी बार बाबा आपको याद दिलाता है, बच्चे अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो, अपने को आत्मा समझो और बाप, कोई बोलता है यही तो बोल रहा है बाबा, क्या बोला, अपने को आत्मा समझो बाप को याद करो, ये इजी हो गया। परंतु इसमें बहुत बड़ा रहस्य है कि अपने को आत्मा समझो माना, आत्मा समझो माना मैं एक शांत पवित्र सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूं, मैं साधारण नहीं हूं, मैं सतयुग की देवता हूं, मैं संगम की फरिश्ता हूं, मैं परम पिता परमात्मा शिव बाबा की गार्डली स्टूडेंट, ये सारी बातें स्मृति में आनी चाहिए कि हम ब्रह्मा के कुमार कुमारियां हैं, चाहे माताएं हैं या अधर कुमार हैं, पर सब ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं। तो ये भी याद होनी चाहिए, चलते फिरते खाते पीते ये हमारी स्मृति में होना, और वह स्मृति हमारे चेहरे से मालूम पड़नी चाहिए। कैसे मालूम पड़ती है, तो बाबा कहता है कि बच्चे आज दिन तक भी आपकी मूर्तियों को चित्रों को लोग ये समझते हैं कि यही शांति दाता है, समझा। आज लोग जाते हैं ये लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण राम सीता के देवल में, वो कहेंगे तुमेव माता च पिता तुमेव, पाप हरने को कहते हैं। तो वो मूर्तियां हैं लक्ष्मी नारायण की आदि, वो किन की मूर्तियां हैं, तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों की मूर्तियां हैं और तुम भी यही हो, तुम्हारी मूर्ति भी है और तुम भी हो, दोनों भी है। तो तुम ही देख रहे हो कि भगत लोग उनकी प्रार्थना कर रहे हैं, कल तक हम करते थे, हम भी करते थे समझो, तो वही प्रार्थना करते थे और देखते थे कि ये कैसे हैं लक्ष्मी नारायण, एक झलक पाने के लिए कितना लोग तड़पते हैं, पता है आपको। आप कभी श्रीनाथ द्वारा जो लोग जाते हैं ना उदयपुर इत्यादि रास्ते में, वो श्रीनाथ द्वारे की मूर्ति कितनी है छोट, और लोग उछल उछल करके देखते हैं। उधर कर्नाटक में उडुपी की कृष्ण की मूर्ति है, देखा है, हाथ उठाइए, उडुपी कृष्ण की मूर्ति आपने देख, डायरेक्ट देखा क्या, चित्र में देखा, तो वो कैसी है, वो गीत तो गाया कि उडुपी कृष्ण न चलो नोडम्मा चलो, ऐसे बोलते हैं ना, वो क्या सुंदर है क्या मगर भावना हमारी ऐसी है, हमारी भावना है कि वो उसकी सुंदरता कितनी भव्य है। तो ये देव भावना है ना देवी देवताओं के प्रति हमारी, तो बाबा कहता है चित्र में मूर्ति में भावना है, और तुम बच्चे इधर हो जिन्होंने ये पार्ट बजाया कल देवी देवता का, ये स्मृति जागृत होनी चाहिए। बाबा चाहता है कि हमारे बाबा चाहता है माना, देखिए कहां सिंध हैदराबाद, कहां कर्नाटक, कहां चेन्नई, कहां आंध्रा तेल आदि आदि प्रदेश है, या विश्व के कोने कोने में कहां अमेरिका, कहां ऑस्ट्रेलिया, कहां चिली, अब वहां तक के बाबा की दृष्टि गई, ये सतयुग की आत्माएं वहां भी हैं, तो वहां से बाबा ने निकाला एक एक को। इसमें से मैं यदि पूछूं कि भाई यहां सुख मिलता है, शांति मिलती है, ये भगवान मिलता है, ऐसा ढूंढते हम तो नहीं आए। हमारे को बार बार बुलाया गया कि आप आओ, यहां अच्छा है, शांति मिलती है, हम यहां आए तो हमको बुलाया गया ना, इनविटेशन विथ रिस्पेक्ट कहा गया कि आप आओ, फिर बिठाया गया, शांति से 7 डेज कोर्स कराया गया, तो हमने आप देखेंगे निश्चय जो बैठता है वह भी बाबा ही बिठाता है। आपने हमने कोई कोशिश नहीं की कि हमारा निश्चय पूरा, जैसे बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयंती, अब निश्चय तो बाबा ही कराएगा। मेरा जहां तक अनुभव है कि निश्चय बाबा ही कराता है, क्योंकि हम निश्चय करेंगे हाँ मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, कितना ही करो आप, पर वो आत्मा का रस अनुभव वो होना चाहिए कि मैं आत्मा हूं। नॉट सिंपली आत्मा, सिर्फ आत्मा नहीं, आत्मा शांत है तो हम कितना शांति में रह सकते हैं, कितना शांति में रह सकते हैं, बहुत कम रह सकते हैं। एक्सपीरियंस यही बोलता है कि हम अभी भी अशांत हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हम भूल जाते हैं कि हम आत्मा हैं। अब वही बात आप देखेंगे, हम दादियों से पूछते थे कि जब साकार बाबा था 1936 से लेकर के 1969 तक 33 ईयर्स, वो दादियां कहती हैं बाबा कभी गुस्सा नहीं किया, तो वो कैसे रहा होगा बहनों के बीच में, क्योंकि ज्यादातर तो बहनें ही थी ना, करीब 350 350 350 मेजॉरिटी बहनें थी, 2-4-5 भैया भाई होंगे वो भी तो उतने उसके कैसे बाबा रहा होगा, कैसे शांति को मेंटेन किया होगा, तो वो हो गया स्वरूप, शांति का स्वरूप। तो वो अब उसकी फोटो को हम देखते हैं, ब्रह्मा बाबा की फोटो को देखते हैं ना, खुशी होती है देखने से, दादियों की फोटो देखने से। आप देखेंगे, मैंने देखा है हिस्ट्री हॉल में या यहां दादी मीटिंग रूम में हॉल में, कितनी बार आप साकार फोटो देखिए, दिल करता है और देखना चाहिए। क्यों देखना चाहिए? क्योंकि सारे चेहरे जो है ना वो खिले हुए हैं, स्माइली फेसेस है, और उसको स्माइलिंग फेसेस को देखने को दिल करता है। किसी का फेस होगा ना, वो यहां बाबा एक दिन कह रहा था अभी 1-2 सप्ताह के पहले संडे की मुरली में, कि जो भी चित्र होता है उस चित्र की आंखें और मस्तक, ठीक है, उसके ऊपर उसकी वैल्यू होती है, मूल्य होता है। सबसे मूल्यवान चित्र वो होता है जिसकी आंखें बड़ी मस्त हैं और मस्तक बहुत, उसमें कोई गांठ नहीं है, मस्तक में गांठ नहीं है, तो वो चित्र वैल्यूएबल होता है। तो वो ये चित्र देवताओं के जो होते हैं ना, ऐसे ही होते हैं। तो इसीलिए गायन होता है कि नयनम मधुरम, सुना है ये गीत आपने, नयनम मधुरम, हाँ वो देवताओं का नयन जो होते हैं ना वो मधुर, स्वीट, माना आंखों में भी हंसी होती है, आंखों में भी हंसी होती है, जैसे कहते हैं आंखें नींद में है अभी, तो वैसे हंसी होती है, खुशी होती है, आनंद होता है। तो नयनम मधुरम, वदनम मधुरम, अधुरम अधरम मधुरम, ऐसे क्या सारा बॉडी, जैसे कहते हैं वदनम मधुरम, वो मधुर है, मधुर का तात्पर्य उसमें कोई विकार नहीं है शरीर में। वो कैसे आया, आत्मा में विकार नहीं है तो शरीर में भी नहीं होता है। अभी हम लोगों की आत्मा में भी विकार, शरीर में भी विकार, अब उसको बाबा निकालना चाहता है। अब निकालेंगे कैसे? एक नई सोच देगा, नए विचार देगा। अब वो नया विचार क्या है? लौकिक में देखिए क्या होता है। हमारे उधर कर्नाटक में कितनी मारामारी चल रही है, तो वीरशैव है तो लिंगायत क्या है। कोई ये नहीं बोलता है कि तू देवता है, तो सतयुग की आत्मा है, तो त्रेता की आत्मा है, ऐसा कोई नहीं बोलता है। अब यहां हम आते हैं, हम उससे ऊपर उठ जाते हैं। लौकिक जो भी संबंध है, तो बाबा कहता है अपने को आत्मा समझना, माना देह के संबंध, देह के वैभव से ऊपर उठना। मनुष्य को देह के संबंध सताते हैं, जिसको कहा जाता है, आज भी बाबा ने कहा काम मोह, आज मुरली में था, तो मोह को कहा जाता है मोह कलिलम। मोह एक दलदल है, दलदल मड, जिसमें मनुष्य फंसता ही जाता है। इसीलिए गीता आप देखेंगे, गीता में जो अंत अंत में क्या कहा गया, पहले उसको बोला काम क्रोध लोभ नरक से त्रिविधम, ये नरक के तीन द्वार हैं, इसको छोड़ो। फिर कहा जही शत्रुम, कि ये अर्जुन ये कामरूपी दुरासद शत्रु को जीत। परंतु अंत में क्या कहता है अर्जुन, क्या कहता है वो नहीं बोलता है कि मैं काम को जीता, क्रोध को जीता, लोभ को जीता, पर वो कहता है मैंने मोह को जीता, है ना, नष्टो मोह, मेरा मोह नष्ट हो गया। अब जब तक ये मोह है तब तक स्मृति स्वरूप बन नहीं सकते, पक्का लिख लीजिए। मोह जब तक है, मोह होता है सबसे पहले अपने ही शरीर से। ये शरीर कहता है अभी ठंडी है तू सो जा, बोलता है ना, सवेरे नहीं बोलता है। अभी यहां हम आए तो सवेरे ठंडी है ना, तो बोलता है ना कि अभी ठंडी में कहां उठता है तू सो जा, तो कहते हैं नहीं ठंडी है ना मेरे को और नींद आ रही। तो वो मोह शरीर का, शरीर को कुछ हो जाता है तो बार बार वो यही सोचता है शरीर के बारे में। तो हमको तो ये कहा गया है कि तुम तो मरजीवा हो, तुम तो मरे हुए हो, तो मरे हुए को और क्या मरना है, एक बार मर गया सो मर गया। तो वो प्रैक्टिकली हम अनुभव करना कि हम लौकिक से कैसे मर सकते हैं, अनुभव होना, ये अनुभव बहुत मुख्य है। जब तक हम इस शरीर से, शरीर के संबंधियों से, शरीर के वैभव होता है ना, वैभव होता है, कोई लॉकेट पहनेगा, कोई कंकन पहनेगा, कोई कुछ, ये सारा बाबा ने सब छुड़ा दिया, समझा। जब बाबा जब पहले पहल 1937 की दीपावली को समर्पित किया अपना सब धन संपत्ति, तो ब्रिजेंद्र दादी जो उनकी बहू थी उसका भी संपत्ति समर्पण करवाया, और उनकी जो बच्ची थी निर्मल शांता दादी उनका भी कराया, और उनकी पत्नी थी जसोदा मैया, जसोदा के भी सारे संपत्ति जो भी उसके पास थी, पर्स गोल्ड वगैरह ज्वेलरी, वो सब बाबा ने स्वाहा करवाया। तो जसोदा एक नथ रख लिया था, तो पूछा ये क्या करेगी, तो बोला ये तो निशानी चाहिए ना, सौभाग्य की निशानी है नथ। तो कहा सौभाग्य के परम भाग्य पद्मा पदम भाग्य है, और जो जिसको तू सौभाग्य बोल रही है पति की निशानी, अब वो पति तो किसी और शिव का हो गया, तो वो भी डाल। तो उसने नथ भी निकाल करके डाल दिया, समझा। ऐसा विश्व के इतिहास में जो कोई पढ़े लिखे यहां बैठे हैं, विश्व के इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलेगा आपको कोई भी संत महंत महात्मा होगा, कोई भी होगा, पर ऐसा उदाहरण आपको नहीं मिलेगा जहां मोह नष्ट, नष्टो मोहा का उदाहरण इतना जबरदस्त मिले, इतना जबरदस्त मिले कि उनकी युगल यशोदा बाबा को बाबा कहे, पत्नी पति को बाबा कहे और पति पत्नी को हां बच्ची बोले, ऐसा उदाहरण आपको कहीं पढ़ने को सुनने को नहीं मिलेगा। हां महात्मा गांधी ने अपनी पत्नी को बा कहा, हां और वो कौन है अरविंदो महर्षि, उसने भी अपनी पत्नी मृणालिनी से छुट्टी ली, ऐसे उदाहरण मिलेंगे। पर बच्ची बोले उसको और साथ में रखे, गृहस्थ जीवन में रह करके पद्मपत्रम इव अंभसी, पानी में कमल पत्र की तरह रहना, ऐसा उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। और उनके हम बच्चे हैं, वैसे ब्रह्मा बाबा के बच्चे हम हैं। तो वो बच्ची कहता था, और आपको पता है यज्ञ सेवा में वो जुट गई यशोदा, और कलकत्ता केंद्र में यशोदा को भेजा, तो जब तक वो टीचर भोजन नहीं करती थी वो यशोदा मैया भोजन नहीं करती थी, कितना देखिए। तो इसको कहते हैं मोह नष्ट की निशानी। तो आपको लगेगा कि ये कैसे हो सकता, इतना हम कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं, इसीलिए तो हमको बाबा ने यहां बिठाया है, नहीं तो हम चले जाते थे दुनिया में। कर सकते हैं, इतनी हमारे अंदर ताकत है, शक्ति है, अब उस शक्ति को अनुभव करना है। नहीं है नहीं, हमारे अंदर शक्ति है, इनबिल्ट है, उसको एक्सप्लोर करना है, बाहर निकालना है, प्रचोदित करना है। जैसे हमने प्रार्थना की ना कि हे भगवान, गायत्री मंत्र में धीहि यो न, कि हे भगवान हमारी बुद्धि को तू प्रचोदित कर, क्योंकि हम निर्णय नहीं कर पा रहे हैं क्या करना क्या नहीं करना, डिलेमा है, कंफ्यूजन है। तो वो नहीं कहता है कंफ्यूजन नहीं है, सीधा सीधा है, तुम आत्मा हो, सब आत्माएं ही हैं, सब एक शिव बाबा के बच्चे हैं, ये आज की बात नहीं है। तुमने ही प्रार्थना की कि हे भगवान तुम ही माता पिता, तुम ही बंधु, तुम ही सखा, तुम ही सभी तुम हो, सारे संबंध उस एक से हैं, तब जाके नष्टो मोहा बन सकते। नष्टो मोहा बनेंगे ही नहीं तो स्मृति स्वरूप क्या बनेंगे? सबसे पहले स्मृति यही है कि मैं आत्मा हूं, मेरा तो एक, जैसे मीरा ने कहा मेरा तो एक गिरधर गोपाल, अब बाबा कहता है मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। जब दूसरा कोई है ही नहीं तो उधर बुद्धि कैसे जाएगी? कल आपने सुना रात में जो थे वहां पर, हाँ वो निर्वैर भाई जी के फंक्शन में, तो वहां क्या सुना कि बाबा ने कहा तुम जब नौकरी करते हो जो पगार आती है थोड़ी जमा रखना। क्यों जमा रखना? आईवेल में काम आएगी, विपत्ति में काम आएगी। तो क्या कहा उन्होंने उत्तर, आप किस लिए हो? विपत्ति में काम, विपत्ति में काम संपत्ति नहीं आएगी, परमात्मा आएगा, बाबा आएगा। हर हमारे संदिग्ध परिस्थितियों में बाबा काम में आएगा ना। सूली से कांटा, कांटे से रुई कौन बनाएगा? शिव बाबा बनाएगा। सभी भाई बहनों का अनुभव ऐसा होना चाहिए कि हमारी हर कष्ट में, हर विपत्ति में, हर संकट में वो हमारे साथ है। परंतु वो साथ कब रह सकता है? जब हम उसके अच्छे कार्य में साथ रहेंगे, हम उसके अच्छे कार्य में मददगार बनेंगे, ये उसका अच्छा कार्य है। विश्व में शांति स्थापन करना, विश्व को ऐसा रामराज्य बनाना, विश्व की हर आत्मा को नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाने की सेवा में लगे रहना। और दूसरे की सेवा तब कर सकेंगे जबकि हम हमारी सेवा कर लें पहले, क्योंकि ये जो शरीर है ये पांच तत्वों का मुद्दा है, पुतला है, पर पांच तत्वों के पुतले से भी पहले ये हमारे लौकिक का दिया हुआ है, समझा, और इसमें विकार भरे हुए हैं। इससे ऊपर उठना है, पहले तो यही खींचेगा, ऐसे ऐसे खींचेगा, काम भी खींचेगा, क्रोध भी खींचेगा, लोभ भी खींचेगा, मोह भी खींचेगा, अहंकार भी खींचेंगे अपने तरफ, आत्मा को, आत्मा तो एक बिंदु है ना, ये सारे उसको खींचेंगे ऐसे ऐसे। पर जितना योग लगाएंगे, स्थिर होकर के बैठेंगे बाबा की याद में, और उसको योग लगाना और स्थिर होकर बैठना, उसके लिए भी क्या चाहिए, क्या चाहिए, योग में बैठना, स्थिर होकर बैठना, याद करना, रिमेम्बरेंस, उसके लिए भी क्या चाहिए, पढ़ाई, पढ़ाई चाहिए। जब तक पढ़ने का शौक नहीं होगा, जैसे वो कहा ना, आनो भद्रा शृण्वंतु, हम कानों से अच्छा ही सुने, तो सुनना ना, रोज रोज जितना हो सकता है उतना अच्छा मुरली सुनिए, दूसरे से ज्ञान की पॉइंट सुनिए, जितना सुनेंगे, जितना पढ़ेंगे, जितना अभ्यास करेंगे। इसीलिए कहा गया मां प्रमोदितव्यम अभ्यासेन, अभ्यास में कभी आलस नहीं करना चाहिए, वो ईश्वरीय अभ्यास, वो ईश्वरीय पढ़ाई, क्योंकि भगवान खुद पढ़ा रहा है और हम गाडली स्टूडेंट हैं, तो कितना ध्यान से पढ़ना चाहिए, चाहिए ना पढ़ना। आप देखिए, हम कम से कम 7-8 हजार लोग यहाँ है, यहाँ हार्डली 800-900 लोग हम बैठे, बाकी कहाँ गए, बाकी कहाँ गए, घूम रहे है ना, आए तो पढ़ने को, मगर वो कहता है ना बाबा, वो बोट में निकले तो जहां देखा कि यहां रुकी है बोट, तो उतर गए, सो उतर गए, ऐसा होता है। इसीलिए पढ़ना ये एक ध्यान पे रखिए, जब तक हम ज्ञान का अध्ययन नहीं करेंगे, हार्डली पढ़ेंगे नहीं, तब तक हमारा योग लग नहीं सकता। पढ़ाई बहुत मुख्य है। दादी जानकी को देखिए, प्रकाशमणि दादी को देखा, जब देखो तब मुरली हाथ में थी। तो सुनो, आजकल आप कहते हैं मोबाइल है, मोबाइल में सुनने से भी ज्यादा पढ़ो, क्योंकि सुनते समय क्या होता है, वो कान को लगा रहता है, हम इधर इधर करते रहते हैं, मिस हो जाती है पॉइंट्स, और पढ़ते हैं ना तो मिस नहीं होते। तो इसी रीति से हमारी पढ़ाई के आधार पर हम योग करेंगे, योग के आधार पर हमारी सोच बदलेगी, स्मृति बदलेगी, हम उसके स्वरूप हो सकते। ओम शांति।
शिव शक्ति